tell, you know, students, engineers, et cetera, commerce, whatever their specialty is, when we tell them things they never heard before from any of their authorities, and now they hear from Hare Krishna, from my generation, we used to say mind-blowing things, you know. Means extraordinary, that wow, whoa, man, that was really far out. This is all language from my generation, you know.
महाराज बता रहे हैं कि जैसे ये सब चीजें स्कूलों में छात्रों को नहीं सिखाई जाती, ये संस्कार, ये सदाचार नहीं सिखाया जाता है। और जब उन्हें पता लगता है कि वैदिक संस्कृति में ऐसे सदाचार का पालन किया जाता था, तो ये सोच के वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनका इन वैदिक संस्कृति के प्रति प्रशंसा बढ़ती है।
So when we tell them amazing things that they never heard before, they're very impressed with it, because they might not say anything, but secretly they're thinking, wow, these Hare Krishnas are really cool. I think, you know, I'll come back again because they keep telling me all these far out things I never heard before. Fact.
तो भले ही वो व्यक्ति जब उसे पहली बार पता लगता है इन सब सदाचारों का, तो वो बहुत ही विस्मित होता है, उसका आदर बढ़ता है। हालांकि वो शब्दों में ना प्रकट करे, लेकिन वो सोचता है कि हरे कृष्णा के लोग मुझे इतने अच्छे संस्कार दे सकते हैं, तो मैं पुनः यहाँ आऊंगा।
So Ramarsan, he failed to stand up and so Lord Ram became very angry.
तो रोमहर्षण खड़े नहीं हुए, इसलिए भगवान बलराम उनसे क्रोधित हो गए।
हो, you are sitting on Vyasa Dhan, the seat of Sri Vyasa Deva, but you do not even know basic etiquette.
तो भगवान बलराम ने इस तरह क्रोध में कहा कि तुम हालांकि व्यास आसन पे बैठे हो व्यास देव जी के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन तुम्हें कुछ भी सदाचार नहीं आता है।
What kind of acharya are you?
किस प्रकार के आचार्य हो तुम?
You're a mlecha, you're not acharya.
तुम एक मलेच्छ हो, तुम आचार्य नहीं हो।
You're not fit to sit on Vyasasan.
तुम व्यास आसन पर बैठने योग्य नहीं हो।
He picks up a piece of kusha grass.
फिर वे कुशा ग्रास का एक तिनका उठा, कुशा ग्रास घास उठाते हैं।
Point.
और बड़े आसानी से रोमार्शन का वध सर काट देते हैं।
Rohmarshan simply strikes him with the kusha grass and he immediately falls dead instantly.
और बड़े आसानी से भगवान बलराम उस कुशा घास के तिनके से रोमहर्षण का वध कर देते हैं और वो वहीं मृत हो जाता है।
So the what 88,000 or something, more than 80,000 sages in Naimisharanya, they were not very happy about this.
लेकिन यह देख करके नैमिषारण्य में उपस्थित 80,000 जो साधु थे, वे खुश नहीं होते हैं।
Well, they couldn't understand why Lord Balaram did it, but still they were upset.
हालांकि वे समझते थे कि भगवान बलराम ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन फिर भी वे निराश थे।
So they replied,
फिर उन्होंने उत्तर दिया,
Sir, we know who you are. We know you're the Supreme Personality of Godhead. We don't have any doubt about that.
श्रीमान, हम जानते हैं कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
You are the source of the Vedas. You are the source of all Dharma.
आप सभी वेदों के स्रोत हैं, पूरे सभी धर्मों के स्रोत हैं।
You are Dharma personified.
आप धर्म के व्यक्तिगत रूप हैं।
So we offer all respects unto you.
हम आपको पूर्ण रूप से आदर देते हैं।
We also know, sir, that you're supremely independent.
हम जानते हैं कि आप पूर्ण स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं।
Sarvakarna Karanam, so you can do whatever you like.
आप सर्व कारण कारणम हैं, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं।
For you there's no such thing as right or wrong, because on the absolute plane whatever you do is right.
आपके लिए कोई कुछ भी चीज सही गलत नहीं है, क्योंकि आप एब्सोल्यूट प्लेन, आप परम सत्य के धरातल पर कार्य करते हैं और सब कुछ आपके लिए सही है।
Because you are independent, you're the supreme, you're the final authority. In the entire creation.
आप परम निर्देशता हैं, आप पूर्ण स्वराट हैं।
But at the same time, we respectfully submit that, you know, killing the acharya sitting on the vyasa, this is this is not good form, sir.
लेकिन हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर कोई आचार्य व्यास आसन पर बैठे हैं और उसका वध हो जाना यह सही नहीं है।
So by now, Lord Balaram may already, it's called vented, you know, he already released his anger, so now he's cool and calm now. He doesn't say angry in this case very long, you know.
चूंकि भगवान बलराम ने अपना क्रोध प्रदर्शित कर दिया था तो अब उनमें कोई क्रोध नहीं था।
So he said, yes, you have a point. I get your point.
तो फिर भगवान बलराम ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं।
So what would you like me to do?
तो आप मुझसे क्या चाहते हैं?
I can bring him back to life if you want. No problem. No big deal.
तो भगवान बलराम ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं इन्हें पुनः जीवित कर सकता हूँ।
So the sages say, no, my lord, you wanted to kill him, so should leave that in place. We are not going to try to reverse that.
तो वहाँ साधु ने कहा कि भगवान आप चाहते थे इसका वध करना, तो हम इसे वापस जीवित तो नहीं कराना चाहते हैं।
But for the sake of human society to preserve dharma, we feel that you should perform some kind of prayashchitta.
लेकिन मानव समाज की धर्म की रक्षा के लिए हम चाहते हैं कि आप एक कुछ प्रकार के प्रायश्चित करें।
So what's prayashchitta, Prabhu? You said atonement?
क्या आप?
Are you looking at him? That's true.
आपने
atonement, you know the meaning of atonement. What does atonement mean? Do you know? Huh? Guilty? No. No, prayashchitta. It's a very important word, prayashchitta. You know, that's why you all have to learn. Certain Sanskrit words are very heavy, and you need to learn them.
संस्कृत में कुछ शब्द बहुत ही भारी होते हैं, गहरे होते हैं, तो आप सबको ये शब्द सीखने चाहिए, जैसे यहाँ प्रायश्चित शब्द है।
So what does prayashchitta mean, Prabhu? Atonement, that's very good. Yes, was I already given away?
प्रायश्चित को अंग्रेजी में अटोनमेंट कहते हैं।
But the point is that what does atonement mean? What does atonement mean?
Atonement अर्थ प्रायश्चित का क्या अर्थ है? उसका अर्थ समझाएं।
What does atonement mean? If to counteract some bad, evil, or sinful activity, you must do penance.
तो जब कोई हम पाप पूर्ण कार्य करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, तो उसको भरने के लिए हमें कुछ पश्चाताप करना होता है, कुछ तपस्या करनी होती है।
Some austerity, ritual, puja, etc.
कुछ रीति रिवाज, कुछ पूजा, कुछ तपस्या, ये सब अटोनमेंट अर्थात प्रायश्चित हैं।
So Lord Balaram inquired, okay, that's fair. So what you want me to do?
तो फिर भगवान बलराम ने पूछा, ठीक है, आप प्रायश्चित करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे उस प्रायश्चित के लिए क्या करना है?
So the spokesman for the sages said, well, sir, you should do some pilgrimage. You should go on pilgrimage.
तो जो साधु वहां उपस्थित साधुओं के जो वक्ता थे, उन्होंने कहा कि आपको प्रायश्चित करने के लिए कुछ तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए।
And because actually it was a very awkward situation. Lord Brahm just killed Ramar's son, but the sages had just given him a benediction of long life.
और यहाँ पे बहुत ही विचित्र सी अजीब सी घटना हुई कि हालांकि भगवान बलराम ने रोम हर्षण को कवर कर दिया, लेकिन लेकिन साधुओं ने भगवान बलराम को ही दीर्घायु का आशीर्वाद दिया.
So the benediction of long life had just been given by the sages, and all of a sudden he's killed. So this creates a dilemma.
क्षमा कीजिएगा, वास्तव में साधुओं ने रोम हर्षण को पहले ही दीर्घायु का आशीर्वाद दिया था और भगवान बलराम ने उसका यहाँ वध कर दिया, तो ये बहुत ही विचित्र अजीब सी घटना हो गई थी.
So I believe it's Lord Balaram that suggests that, well, the son is non-different from the father, therefore we will put Romarsan Sutta, the son of Romarsan.
तो फिर भगवान
install him, huh?
फिर भगवान बलराम ने सुझाव दिया कि क्योंकि पुत्र पिता के ही समान है, तो हम यहाँ रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा या फिर तो फिर ये सुझाव दिया जाता है कि उग्रश्रवा को व्यास आसन पर बिठाया जाए.
His father should have long life, so the son represents the father, and thus the benediction was not broken.
और इस तरह से पुत्र को उग्रश्रवा सुता रोम हर्षण के पुत्र को व्यास आसन पर बिठाया गया, जिससे कि जो साधु थे उनके आशीर्वाद को पूरा किया जा सके, और इस तरह से जो सुत गोस्वामी हैं वे व्यास आसन पर बैठते हैं.
So then he would have gone, Lord Balaram would have gone to all these places of pilgrimage throughout the entire continent of India also.
और फिर भगवान बलराम जी भारत खंड के पूरे सभी तीर्थ स्थानों पर भ्रमण के लिए चले जाते हैं.
It's quite amazing when you consider, you know, the amount, number of kilometers between these places of pilgrimage is, the English word is formidable, you know, the word formidable means very great, you know.
तो भगवान बलराम फिर इन तीर्थ स्थानों के भ्रमण पे जाते हैं, जिनमें कि अगर हम भौतिक दृष्टि से दूरी देखें तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा किलोमीटर्स है ये.
For example, the distance between Delhi and Sri Rangam, so this thousands of kilometers, you know.
तो जैसा कि दिल्ली से श्रीरंगम में भी बहुत हजारों किलोमीटर की दूरी है.
To take a train from Delhi to Sri Rangam would take what, 3 days or something? Non-stop even a fast train, at least 3 days.
2 days.
48 hours.
Depends on the
form. Non-stop. Express train, 2 days to Sri Rangam.
तो अगर दिल्ली से कोई ट्रेन पकड़े हम श्रीरंगम के लिए, तो वो अगर एक्सप्रेस ट्रेन भी हो तो लगभग 2 दिन वहां पहुंचने में लगते हैं, इतनी ज्यादा दूरी है इन तीर्थ स्थानों में.
But the point is, it's not a short journey.
और मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह कोई छोटी दूरी नहीं है.
Yet the Supreme Lord and his different incarnations And the great saints and sages like Maitreya, Uddhava, others that went on pilgrimage in the days of yore, all by foot, not even by horse.
और फिर भी इतनी दूरी होने पर भी भगवान के कई अवतार और अन्य साधुगण जैसे उद्धव और मैत्रेय ये सभी पैदल ही अपने पैरों से ही तीर्थ स्थानों की यात्रा करते थे और पहले के समय में भक्त भी पैदल ही चला करते थे तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए भी
Like thousands of years later, in the time of after Chaitanya Mahaprabhu, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, all they also all walking in on pilgrimage. The Goswamis also walking.
और हजारों साल बाद भी चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ये सभी भी पैदल ही तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं करते थे
they had a triangle the devotees would go on a triangle basically Navadvip Dham Jagannath Puri Vrindavan that was the triangle in which basically the devotees after Mahaprabhu would go on that triangle
और महाप्रभु के भक्त इस त्रिभुज पर चलते थे जिसमें एक कोना वृंदावन दूसरा मायापुर और तीसरा जगन्नाथपुरी इस त्रिभुज पर ही यात्रा करते थे
So even to go from Navadvip to Jagannathpuri, still that's a long journey by train.
तो नवद्वीप से अगर जगन्नाथपुरी भी जाएं तो ये भी बहुत लंबी दूरी है.
Nityananda Prabhu also went on pilgrimage.
Nityananda Prabhu भी तीर्थ भ्रमण पर गए.
Everywhere in India.
भारत में सभी जगहों पर.
Vidura also pilgrimage. Vidura. After he became so disgusted that he left the palace of Duryodhana. Actually, Vidura had his own palace, but after he couldn't handle the offenses anymore of Duryodhana, so he left the palace. Bhagavad says he parked his bow at the doorway and he left.
और विदुर भी जब दुर्योधन द्वारा अपमानित किए जाने पर अपना महल छोड़कर तीर्थ भ्रमण पर निकल गए श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि उन्होंने अपने धनुष और तीर को दरवाजे पर छोड़ करके और वे तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए
so he also went to all these pilgrimage places.
और वे भी इन सभी तीर्थ स्थानों पर गए भारत वर्ष के सभी तीर्थ स्थानों
many cases he would have gone to South India also.
तो कई कई केसेस में वे दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों पर भी गए
माधवाचार्य आल्सो सो दिस इज द वैष्णव ट्रेडिशन
तो माधवाचार्य भी ऐसे ही तीर्थ भ्रमण पर गए थे तो ये एक वैष्णवों का एक रीति है कि वे तीर्थ भ्रमण पर जाते हैं
यू कैन इमेजिन इवन टुडे गोइंग अप इन द हिमालयस वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डेंजरस आल्सो
हम कल्पना कर सकते हैं कि हिमालय पे तीर्थ यात्रा के लिए जाना आज कितना खतरनाक है
So even today the road is very narrow and very dangerous.
आज भी जो सड़क वहाँ जाती है वो बहुत ही संकरी है और बहुत ही खतरनाक है.
Going up to Badrinath.
जो सड़क बद्रीनाथ जाती है वो बहुत ही संकरी और खतरनाक है.
So but still Madhvacharya he went up there to meet with Srila Vyasadeva to. Get his approval of his purports of Bhagavad Gita.
और फिर भी मध्वाचार्य वहाँ बद्रीनाथ में व्यास देव जी के पास गए ताकि वे भगवत गीता पे उनकी व्याख्या टीका सुन सकें.
So in those days the trail was probably about as wide as this book. you know, the trail of the Himalayas in those days. There was no highway, that's for sure. It would have been barely wide enough to walk on, you know.
और उस समय निश्चित रूप से कुछ इतनी चौड़ी सड़क नहीं होगी वहाँ पर जब माधवाचार्य व्यासदेव जी से मिलने गए थे भगवत गीता की व्याख्या सुनने.
When I went up to Mukhinath, this was before they built the road. Now there's a road, but when I went up there, it was before they built
जब मैं मुक्तिनाथ गया था तो वहां पर भी कोई सड़क नहीं थी, अब वहां सड़क बन गई है।
And I had to go by pony. Pony. Pony means small horse.
तो मुझे पिट्ठू और खच्चर की मदद से वहां मैं गया था मुक्तिनाथ।
And sometimes the trail was so steep that the pony keeper would order you to get off the ponies. Pony is small horse. P-O-N-Y, small horse. Sometimes the horse keeper would force you to get off the horse because it was too steep, and they warned you that if you tried to stay on the horse, he would stumble.
Yes,
well, he would fall, and then you and the horse would go down the mountain, so he would tell you, now you have to get off the horse. Yeah.
तो जब मुक्तिनाथ की यात्रा में कुछ जगह ढलान इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें खच्चर से उतरना होता है, जो चालक होता है वो कहता है अगर आप बैठे रहेंगे तो आप दोनों ही खच्चर और आप दो। और वहां पर कोई सड़क नहीं थी, एक कच्ची सड़क थी मिट्टी की। तो जो पहाड़ के नीचे से वो शुरू होती है कच्ची सड़क।
I forget the name of the village, but it's where the plane, the airport is there, and from there you have to go by trail.
Johnson.
Okay. So from there, there was no question of going by taxi and no road.
तो मुक्तिनाथ जाने के लिए एक एयरपोर्ट आता है जॉनसन। उस एयरपोर्ट से आपको कोई सड़क नहीं मिलेगी, आपको कच्ची सड़क ही मिलेगी।
I was with a party of Sri Vaishnavas, about 50 Sri Vaishnavas. They invited me to go along, so I thought, okay, once in a lifetime, I'll go with take this opportunity.
तो मुझे भी श्री वैष्णव ने आमंत्रित किया था इस यात्रा के लिए। मेरे साथ 50 श्री वैष्णव थे। मैंने ये विचार किया कि ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है जीवन में, तो मुझे जाना
चाहिए।
तो उन्होंने मुझे एक खच्चर पे बिठवाया था और यह खच्चर बहुत ही राजसिक था। ये बहुत ही मजबूत था, हालांकि छोटा था।
And so it was jammed with a whole bunch of other horses in front of it, a whole bunch of other horses, and so it was jammed. It couldn't proceed, but it was really rajasic mood, and it wanted to run, but it couldn't go because it was jammed up with the other horses in front. But I could tell. I said, "Oh, this horse wants to run."
तो मैं जो महाराज का जो खच्चर तो बहुत ही राजसिक था।
So the other horses in front, they started going. So there was nothing left anymore to stop this horse. I see choking and ecstasy. Come on, give me some water.
तो वो जो खच्चर था वो बहुत ही राजसिक था, वो अन्य खच्चरों से आगे दौड़ के जाना चाहता था।
There was no saddle on this horse, no saddle. Saddle means? Yeah. You're indicating that there's a horn right on the saddle. It's called a horn. You're indicating beginning there's something to grab onto, right? Well, there wasn't anything. There was just a blanket, a couple of blankets, that's it. There was no horn to grab onto.
तो उस खच्चर पे कोई बैठने के लिए सीट नहीं थी, कुछ कंबल थे और उसकी लगाम भी नहीं थी.
Means a horn means a knob that sticks up from the saddle, you know, knob, you know, bump.
सीट पर पकड़ने के लिए कुछ, घोड़े के पीठ पर कुछ भी नहीं था जिसको पकड़ा जा सके.
There wasn't anything like it, just blankets. And everything was loose. Loose.
Was khachar pa.
He's choking in ecstasy.
To us khachar ki peeth pe pakadne ke liye kuch bhi nahi tha, to bahut mushkil tha.
So sure enough, all the other horses were out of the way, and my horse took off at about 10 kilometers per hour. I mean, it was a fast horse, you know, and it was really fired up and roaring, really roaring, ready to go. This horse takes off at 10 kilometers per hour, you know? That's fast for a horse, you know.
तो वो जो घोड़ा था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार.
Where was it going? Where was this horse going?
लेकिन ये घोड़ा जा कहाँ रहा था?
It was headed straight for a bridge. Straight for a bridge.
और ये सीधा एक पुल की ओर दौड़ रहा था.
The bridge had no railing except it had a railing that was 1/4 meter tall. That's all. So there was nothing, you know. The horse goes charging across this bridge, you know. It's like choking in ecstasy.
तो ये घोड़ा जिस ब्रिज की ओर जा रहा था, इस ब्रिज पे साइड में जो रेलिंग थी वो भी ज्यादा ऊंची नहीं थी.
The bridge was going across a canyon that was about at least 3,000 meters deep. And that is a true story. I'm telling you in front of these. It's 3,000 meters deep canyon, no railing on the bridge, horse running 10 kilometers per hour, and just the saddles just slipping from side to side, and nothing for me to grab onto. Nothing for me to grab onto except the hair on the back of the horse would make it go faster.
ये जिस घाटी की और ये घोड़ा
खाई थी,
वो एक खाई थी, उसमें तीन, उसकी गहराई 3,000 meters की थी और ये घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा था. खच्चर बहुत तेजी से जा रहा था और कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं था.
From side to side, it would have been, you know, the whole thing could have gone over, and then it went over, and then the horse is near the edge of the bridge. The guy, if the saddle had slipped, it wasn't a real saddle, if the cloth I was sitting on had slipped, and it's slipping from side to side, if it had slipped anything more, and if I went over the side where I go, boom, yeah, 3,000. Meters down. And other horses have fallen off, yes they have. Yeah, but Krishna protected me.
तो वो जो खच्चर दौड़ रहा था जब, तो जो पीठ पे महाराज बैठे थे और उस पर पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं था, और महाराज की सीट जो कंबल पे महाराज बैठे थे वो साइड में बार बार हिल रहा था, तो कुछ खच्चर तो उस खाई में गिर भी रहे थे. लेकिन महाराज महाराज बता रहे हैं कि मुझ पे भगवान की कृपा थी कि मैं मुझे भगवान ने बचा लिया
Anyway, so the great saints and sages and Nityananda Prabhu, Lord Balaram, they also went to Badrinath.
Bhagwan Nityananda Prabhu aur kai sadhu bhi Badrinath gaye hain.
Just going across this one canyon alone must have been a big deal because they would have to go down 3,000 meters along a tiny little trail on the side of the canyon down to the river and then go up the other side, you know, another 3,000 meters. I mean, there was no bridge in those days.
और क्योंकि उन दिनों में कोई पुल वगैरह नहीं होते थे तो उन्हें भी इस तरह 3,000 गहरी घाटी में पैदल नीचे जाना होता था फिर थोड़ा पैदल चलते थे फिर वापस 3,000 मीटर ऊपर चढ़ना होता था
We have to conclude by emphasizing a very important point here made by Srila Prabhupada in his purport.
और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं
Many people leave their sinful activities at these places of
pilgrimage. But
the places of pilgrimage become polluted by the sins left by such pilgrimers.
और इस तरह से ये तीर्थ स्थान जो पापियों द्वारा पाप कर्म छोड़े जाते हैं उससे दूषित हो जाते हैं
These contaminations are counteracted by the visit of great personalities like Mahaprabhu and his strict followers.
और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों द्वारा जब वे इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो इन तीर्थ स्थानों का कलमश धूल हो जाता है
Now try to understand that Prabhupada has used, he says, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his strict followers. This is very important.
यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सच्चे अनुयायियों जैसे महापुरुष
So that means even devotees, Gaurimath devotees or ISKCON devotees in the line of Mahaprabhu who go to these holy places, believe it or not, even though we are fallen and ourselves polluted, but actually by following Acharya, these places are purified even by little devotees like us, believe it or not. Because Prabhupada says, and his followers.
तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं गौड़ीय मठ भक्त या इस्कॉन के भक्त भले ही वे नए भक्त ही हों लेकिन अगर वे क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी हैं इसलिए उनके भी तीर्थ स्थानों पर भ्रमण से तीर्थ स्थान पवित्र होते हैं
So Prabhupada uses the example of a hospital that's purified by knowledgeable doctors.
तो जैसा कि प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि अस्पताल जो कि सदैव संक्रमित रहते हैं लेकिन कुशल चिकित्सक द्वारा उसे शुद्ध बनाया जाता है।
But the places of pilgrimage, they are purified by the saints and sages and incarnations that go there.
और तीर्थ स्थान भी साधुओं संतों के द्वारा तथा भगवान के अवतारों के जाने से पवित्र होते हैं
Any questions, comments?
किन्हीं का कोई प्रश्न या टिप्पणी
Okay, Granacharya Sri Chaitanya Charitamrita ki
jai
Jai Guru Sri Prabhupada ki jai Sri Radhika Ramana Krishna Balaram ki jai Hare Govind Hare Hare Govind
परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद गोस्वामी महाराज की
जय